हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्जुन और आंशी अमन के घर पर आए हुए थे। लावण्या ने आंशी को फाइल मंगाने के बहाने से बुलाया था। वहाँ अमन और लावण्या की सगाई हो रही थी। रिंग एक्सचेंज करने से पहले अर्जुन और आंशी वहाँ पहुँचे। अमन की फैमिली के कहने पर दोनों वहीं रुक गए। चलिए, अब सारी रस्में हो गई हैं तो दोनों बच्चे रिंग एक्सचेंज कर लेंगे, तेजू जी ने कहा। लावण्या के पापा गौतम जी ने हामी भरी। मैं चाहता था ये सेरेमनी ग्रैंड हो। कोई बात नहीं पापा, हम ग्रैंड वेडिंग कर लेंगे, लावण्या ने मुस्कुराकर कहा। दीवी वॉशरूम में है, वो आ जाए फिर रिंग्स एक्सचेंज कर लेना, प्रेरणा जी ने कहा। विधिक किसी मीटिंग में जा रहा था तो लावण्या दिव्याना को घुमाने के बहाने से अपने साथ ले आई थी। लावण्या और अमन को साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बहाना बनाकर वॉशरूम में चली गई। आप लोगों ने तो कहा था सिर्फ आपकी फैमिली यहाँ है, फिर ये दिवी कौन है, आंशी ने पूछा। लावण्या की बड़ी बहन, चेतना जी ने मुंह बिगाड़कर कहा। वैसे वो यहाँ नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से खामखा देर हो रही है। उनकी बात सुनकर गौतम जी और प्रेरणा जी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनमें से कोई कुछ बोलता तभी सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं आंटी जी, अब आपको मेरा और वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आ गई हूँ। मेरे आने से आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की सगाई मायने रखती है, दिव्याना सामने से आते हुए बोली। उसने चेतना जी की बातें सुन ली थी। इतना सब होने के बावजूद उसके चेहरे पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। आंशी हैरानी से उन सब की बातें सुन रही थी। उसने एक नज़र दिव्याना की तरफ देखा। वो वाकई काफी खूबसूरत थी। उसने पेस्टल ग्रीन कलर का सूट पहना था। इस लड़की को देखकर सब चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हैं, ये तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, आंशी ने अर्जुन से फुसफुसा कर कहा। तो दो मिनट के लिए चुप नहीं हो सकती है, इनका फैमिली मैटर है और हम यहाँ बेवजह आए हुए मेहमान, अर्जुन ने उसे आंख दिखाई। दिव्याना ने अर्जुन और आंशी की तरफ देखकर पूछा, ये दोनों कौन हैं? आंशी मेरे ऑफिस में काम करती है और ये इसका फ्रेंड अर्जुन है, अमन ने बताया। ओ, मुझे लगा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो यहाँ ऐसे तैयार होकर आई जैसे इसके खुद की सगाई हो, दिव्याना ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। किसी ने उसकी बात की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिव्याना के वहाँ आने के बाद अमन और लावण्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए खड़े हुए। अमन का दिल आंशी के लिए धड़क रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नजरें आंशी की तरफ जा रही थी। लावण्या ने उसका हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाई। अब उम्र भर के लिए तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा और कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर पाएगा, उसका इशारा आंशी की तरफ था। जवाब में अमन मुस्कुराया और उसे भी रिंग पहना दी। उन दोनों को साथ देख आंशी की पलकें भीग गईं। उसका उतरा चेहरा देख अर्जुन को समझते देर नहीं लगी। उसने आंशी का हाथ पकड़ा और उसे मुस्कुराने का इशारा किया। उन दोनों की सगाई के बाद आंशी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, हम वैसे भी यहाँ अनवांटेड गेस्ट हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेजू जी बोली, मेहमान तो भगवान होता है, तुम दोनों लंच करने के बाद ही जाना। नहीं आंटी जी, हमें वाकई देर हो रही है, आपने हमें यहाँ रुकने का कहा उसके लिए थैंक्स, अर्जुन बोला। वो नहीं चाहता था आंशी वहाँ रुके और उन दोनों को साथ देखकर और हर्ट हो। प्लीज रुक जाओ, अमन ने आंशी की तरफ देखकर सोचा। आंशी ने जाने से पहले एक नज़र अमन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अर्जुन के साथ वहाँ से चली गई। जाते समय चेतना जी ने जबरदस्ती उन दोनों के लिए लंच पैक करवा दिया। उनके जाने के बाद अमन और लावण्या की फैमिली साथ बैठकर लंच कर रही थी। लंच के बाद सब लिविंग रूम में बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहे थे। सब घर वाले जब बातों में व्यस्त थे तब लावण्या ने दबी आवाज में दिव्याना से कहा, थोड़ी देर पहले साड़ी में जो लड़की आई थी, क्या तुमने उसे गौर से देखा? उसमें ऐसा क्या था जो मैं उसे गौर से देखूं? हाँ, फिर भी मैंने उसे एक नज़र देखा था। पहली नज़र में उसे ऑब्जर्व करूं तो दिखने में मासूम थी, साड़ी में खूबसूरत भी लग रही थी, पर उसका इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्या तुम्हें पता है ये लड़की वही है जिस पर हमें विधिक की गर्लफ्रेंड होने का डाउट है? उसका नाम आंशी है, ये लड़की ही विधिक की बटरफ्लाई है। अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ पर हमारा डाउट गलत नहीं हो सकता, लावण्या ने बताया। उसकी बातें सुनकर दिव्याना को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो आगे की बात करने के लिए लावण्या को बाहर लेकर आई, जहां बाकी लोगों से अलग वो उससे खुलकर बात कर सकती थी। तुम सच कह रही हो, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं उस लड़की से कुछ जानने की कोशिश कर सकती थी, बाहर आते ही दिव्याना ने पूछा। नहीं कर सकती हो, लावण्या ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? वो तो अमन के ऑफिस में काम करती है, अब तक तो उसने उसके बारे में काफी पता लगा लिया होगा। उसके पास तो पावर है, वो उसे अरेस्ट करके उससे बहुत कुछ पता लगा सकता है। वो ऐसा नहीं कर रहा है। ना जाने उस लड़की में ऐसा कौन सा जादू है जो उसके पीछे पहले वो विधिक राणा और अब अमन। बोलते हुए लावण्या रुक गई। उसकी आंखों के सामने अमन का चेहरा घूम रहा था, जब सगाई के समय उसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट थी। वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं अमन भी उसे पसंद न करने लगा हो। तुम मुझे एक के बाद एक नए झटके दे रही हो। अगर अमन तुमसे प्यार करता है तो वो उस लड़की को क्यों पसंद करेगा? मुझे पसंद करता है लेकिन प्यार नहीं। साथ काम करते हुए मैं उसे पसंद करने लगी। मैं उसके लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर थी जिसके सामने उसे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। बाकियों की तरह मुझसे छुपाना नहीं पड़ता कि उसका काम क्या है। मैं उसका ऑफिस और एजेंसी दोनों में पूरा साथ दे रही हूँ। यही वजह है कि वो मुझसे शादी कर रहा है। आज मुझे उसकी आंखों में फीलिंग्स नजर आईं, पर वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए थीं। बताते हुए लावण्या की आवाज भारी हो गई, उसकी पलकें भीगी हुई थी। दिव्याना ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। तो कंपटीशन में एक और लड़की आ गई, उसने बड़बड़ाकर कहा। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर सच में वो विधिक के बटरफ्लाई है तो हमें बस उसे विधिक तक पहुंचाना है, दिव्याना ने लावण्या से कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे प्रोफेशन के साथ गलत होगा। अगर विधिक ने हमसे पहले उसे ढूंढ लिया तो हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। लावण्या की बातों से साफ जाहिर था कि वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी। इस हिसाब से तो अमन भी अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहा है। अगर उसे उस लड़की पर इतना डाउट है तो वो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा? हमें ये बात दत्त सर को बतानी होगी, गुस्से में दिव्याना ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? धीरे बोलो, लावण्या ने दबी आवाज में उसे डांटा। वो विधिक राणा के संपर्क में नहीं है और ना ही हमारे पास कोई सबूत है कि वो पहले उसके टच में थी। हमें सबूत ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सबूत खुद हम तक चलकर आएंगे। मैंने तुम्हें आंशी के दोस्तों की मौत के बारे में बताया था, क्या तुमने उनकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया? लावण्या ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। हाँ, मैंने उस बारे में दत्त सर को बताया था और उन्होंने तुरंत टीम को इस काम पर लगा दिया था। अब मैं कह सकती हूँ कि विधिक राणा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सृष्टि, हैरी और प्रिंस की मौत के कोई सबूत नहीं है। उन तीनों की मौत एक्सीडेंटल दिखाई गई है। यहाँ तक कि होटल में भी विधिक और उन चारों के मिलने का कोई प्रूफ नहीं मिला। वो होटल विधिक का है, जाहिर सी बात है वो आराम से सबूतों में तब्दीली काफी कर सकता था।
ठीक है, फिर तुम सब मुझ पर छोड़ दो, बाकी बातों का पता नहीं, लेकिन विधिक की बटरफ्लाई को मैं हम लोगों के बीच कभी नहीं आने दूंगी, दिव्याना रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान लावण्या के मन में डर पैदा कर रही थी। तुम क्या करने वाली हो? आई रिक्वेस्ट यू, कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से मेरे और अमन के रिलेशन में फर्क पड़े। अमन अच्छे से जानता है कि मैं आंशी को लेकर डाउट्स हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो सबसे पहले हमारे रिश्ते पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? दिव्याना ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो लिटिल सिस्ट, रा मैं ऐसे काम करूंगी कि हमारी ड्यूटी से भी हमें गद्दारी न करनी पड़े और आंशी को भी हमारे रास्ते से हटा दूंगी। दिव्याना लावण्या का कंधा सहलाया और अंदर जाने लगी। वहां आने पर उसे काफी बातों का पता चला था। लिविंग रूम में हुई बातों के बाद अंदर जाते हुए उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। वेरी गुड डियर सिस्टर, वैसे तो मुझे वैम्स वाले काम करने बिल्कुल नहीं पसंद, पर साथ ही मेरी चीज कोई मुझसे ही छीन कर ले जाए ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अमन सिर्फ मेरा है, तुमने तो उम्मीद से ज्यादा मेरी हेल्प कर दी। अब मैं उस लड़की को विधिक तक पहुंचाऊंगी और सारा इल्जाम तुम पर आएगा। इसके बाद तुम्हारा और अमन का रिश्ता टूटते एक सेकंड भी नहीं लगेगा। विधिक राणा को कुछ नहीं चाहिए, जहां तक मैं उसे जानती हूं वो उस लड़की के साथ वहां से भाग जाएगा। अमन की लीडरशिप में मिशन फेल मतलब उसका डिमोशन। अब तुम अपनी इस जीनियस सिस्टर का कमाल देखना, कैसे मैं अपना सब कुछ वापस हासिल करती हूँ। दिव्याना अपने परिवार के बीच का मासूम चेहरा बनाकर बैठी थी। अब उसे अमन और अपने प्रमोशन को फिर से पाने का रास्ता मिल गया था। वहीं दिव्याना के इरादे जानने के बाद लावण्या को उसे सब कुछ बताने का पछतावा हो रहा था। लावण्या की मुस्कान देखकर उसके मन में डर पैदा हो रहा था कि वो जरूर कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से हर बार की तरह एक नया भूचाल आ जाएगा। 12वां अध्याय। अर्जुन आंशी के साथ गाड़ी में था। वो उसे अमन के घर से अपने घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जा रहा था। वो उसके घर से काफी दूर आ गए थे। इतनी देर में आंशी ने अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हें कहीं कोई काम है क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? आंशी ने अर्जुन को गाड़ी को यू टर्न देते देखा तो हैरानी से पूछा। चलो, तुम्हारा मौन व्रत तो टूटा, अब बताइए कब हुआ? आगे जाने पर ट्रैफिक होने की वजह से अर्जुन को गाड़ी रोकनी पड़ी। कब हुआ? मतलब क्या कब हुआ? आंशी ने पूछा। ज्यादा मासूम बनने का दिखावा मत कर, मैंने देखा था जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहना रहा था तब तुम्हारी आंखें नम थीं, अर्जुन ने गंभीर होकर कहा। आंशी की आंखें अभी भी नम थीं, उसने दूसरी तरफ देखा और हंसने का दिखावा करने लगी। तुम क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? उन दोनों को साथ देखकर मैं क्यों दुखी होंगी? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात तुम मेरी तरफ देखकर बोल, अर्जुन ने आंशी का मुंह पकड़कर अपनी तरफ कर दिया। अभी भी झूठ बोल रही है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है तू मुझे सब कुछ बता सकती है। जानता हूँ सब जगह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर मुझे सब बताकर तुम अपना दिल हल्का कर सकती हो। मुझे झूठ नहीं सुनना, अब सच सच बता, तू उसे पसंद करने लगी है ना? अर्जुन की बात सुनने के बाद आंखों में कैद आंसू बहने लगे। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी के शीशे खोल दिए। उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने उसे गले लगा दिया और सहलाने लगा। तुम्हें उसे बता देना चाहिए। मैं उसे नहीं बता सकती, मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, और वो, तुम नहीं जानते वो कौन है, उसकी लाइफ में कोई और है, मेरी वहाँ कोई जगह नहीं है। अगर किसी का पास्ट बुरा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। उससे प्यार करने से पहले तुम्हें नहीं पता था वो कौन है। मुझे खुशी है तुम उससे आगे बढ़ गई हो, और तुम्हें बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे बॉस की लाइफ में कोई और है, पर किसी और को तुम्हें ये मौका देना चाहिए। आंशी की आंखें बंद थीं, अर्जुन उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं ट्रैफिक में उनके बगल में विधिक की गाड़ी थी। ट्रैफिक क्लियर नहीं होने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गाड़ी के शीशे हटाए तो पास की गाड़ी में उसे आंशी दिखाई दी, वो भी किसी के गले लगे हुए। ये सब देखने के बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा, कोशिश यही रहती है पाठ जल्दी दूं, पर हो नहीं पाता।